दो घड़ी भी बहुत बड़ी, कोड़ी जीवन बनाए हीरा जैसे जादुई छड़ी, कोड़ी जीवन बनाए हीरा जैसे जादुई छड़ी। दर की गली में सांसे चलती कहीं भटक ना जाए, ये घड़ी लौट आए पल पल बहती कल कल करती, समय की नदियां गाए सत्य गवाई कर लो भाई, जीवन जीता जाए ये घड़ी लौट ना आए पल पल बहती कल कल करती, समय की नदियां गाए ये घड़ी लौट ना आए ये घड़ी लौट ना आए।
आवाज लेकर
Thank you. ओम शांति
ओम शांति
ओम शांति ओम शांति
हम
ओम शांति
ओम शांति
ओम शांति
आज के इस समय में हम हमारी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी अनीता बहन का बहुत बहुत स्वागत करते हैं और स्वागत के साथ साथ मैं आपकी बहुत आभारी भी रहूंगी क्योंकि सभी को ये मालूम था कि आज हमारी उषा बहन ये कार्यक्रम अटेंड करेंगी परंतु कुछ कारणवश वो हम सबके बीच उपस्थित नहीं हो पाए हैं और हमारी अनीता बहन ने एक शब्द में कहा कि जरूर हम इस सेवा को स्वीकार करेंगे इसलिए मैं अनीता बहन का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ शुक्रिया अनीता बहन बहुत बहुत वेलकम है आपका ओम शांति
ओम शांति ओम शांति
ओम शांति
अ वेरी गुड वार्म good evening to all of you today on behalf of Brahma Kumaris Nagpur in collaboration with faculty development program cell of Shri Mathuradas Mehta College of Science has organized a talk on harmony in relationship so today's speaker is the most dynamic personality that is BK Anita Didi ji I am so fortunate and it's my privilege to introduce BK Anita Didi BK Anita first came in contact with Brahma Kumaris in 1979 after completing her studies in 1987. She dedicated her life for the spiritual development of self and others. Since her childhood, she has had strong spiritual leanings, but it was only after coming in contact with Prajapita Brahma Kumari's Ishwarya Vishwavidyalaya that all her questions were satisfactorily answered and she pursued this path wholeheartedly. Her intense concentration and rigorous discipline of the mind together with a deep faith in the divine continues to give her sublime spiritual experiences. She has conducted meditation camps in various states of India. She has delivered thought-provoking lectures on stress management, relation management, positive lifestyle, self-realization, making the magnetic personality, to name a few. She has done a special project work on values in life and conducted various personality development course for students. She has conducted self-management leadership course for the officers in private as well as in government sectors like IFPO, CRPF, Police Training Institute, IT, BPF, Rotary Club, Lions Club, etc. She also led Jyotirlingam Rathayatra in year 2000 and a rally on women empowerment in 2003, organized by Prajapita Brahma Kumari's Ishwarya Vishwavidyalaya and many more campaigning. She has a faculty member of teachers training and Gyan Yog Bhatti intense meditation program conducted at the international headquarters of the Brahma Kumaris. She is regular faculty members of Sonipat Retreat Center, Punjab Zone. She also delivers motivational lectures on Peace of Mind TV and Om Shanti channel of Brahma Kumaris. Thank you. Om Shanti. Now over to BK Anita Did.
Om Shanti. आज
ओम शांति
बहुत खुशी की बात है कि हम ऑनलाइन होते भी नजदीक में बात कर रहे हैं दूरियां कहते हैं मैटर नहीं करती हैं अगर दिल दूर ना हो तो आज हम दिल के स्नेह से गॉडली लव से आप सबको प्योर वाइब्रेशन भेज रही हूं पीसफुल वाइब्रेशन भेज रही हूं चारों तरफ एक भारी माहौल है जरूर लेकिन ऐसे टाइम पर अपने मन को हल्का बना के रखना और अपने रिलेशंस को हार्मोनियस रखना बहुत समझदारी का विषय माना जाएगा क्योंकि यही टाइम है अपने विजडम को यूज करने का क्योंकि नॉर्मल डेज में तो सभी अच्छे होते हैं जब ट्रेजेडी का टाइम आए तभी इंसान की सही वैल्यू पता चलती है कहते हैं अच्छे दोस्त की परख क्या होती है जो मुसीबत में काम आए तो मुसीबतें इंसान को आजमाती हैं और हम सब जो सुनने वाले हैं मैं समझती हूँ इस मुसीबत की आजमाइश में अवश्य खरे उतर रहे होंगे कुछ 19-21 माइंड में क्वेश्चन होगा कहीं कुछ थोड़ा बहुत टफ एंड टाइट फील करते होंगे तो आज से उस पर भी काम करके ठीक कर लेंगे कुछ एक बातों का ध्यान भी रखेंगे और कुछ एक नई बातें अप्लाई भी करेंगे आज के इस लेक्चर को सिर्फ लेक्चर नहीं समझना हम एक बातचीत करेंगे प्रैक्टिकल ग्राउंड पर ओपन माइंडेड होकर सुनना और एक तैयारी करना कि अब कुछ नया करना है नया पाने के लिए नया करना होता है। अगर बीज आम का डाला हुआ है, आम खा खा के थक गए हैं, अनार की इच्छा हो रही है, तो बीज अनार का चाहिए। तो किसी भी तरह के चेंज के लिए कुछ नया करने की जरूरत होती है। यू नॉलेज वाइज तो हम बहुत कुछ नया नया जानते भी होंगे, औरों को सुना भी सकते होंगे, हमको मालूम पड़ा सारे शिक्षाविद हैं, टीचिंग बहुत अच्छा पॉइस सब्जेक्ट है, लेकिन एक वक्त ऐसा आया है जब सिर्फ अपने को पढ़ाना ही काम आएगा, दूसरे को पढ़ा लेने से कुछ बाहरी फायदे अवश्य होते हैं, जरूरत उसकी भी बहुत है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत है खुद खुद का टीचर बनने की। तो आइए चलिए कुछ कदम उठाएं अपने रिश्तों को ठीक करने के लिए। पहली बात, सीधा स्ट्रेट बात पर आते हैं, किसी भी तरह की डेफिनेशंस को बीच में लिए हुए। रिश्ते निभाना एक तपस्या, और इस तपस्या को कभी माइंड नहीं करना चाहिए आज, क्योंकि हर एक कमजोर हो गए हैं, तो एक्सपेक्टेशंस ऐसी हो गई हैं कि ये तपस्या दूसरे तो करें, मैं उसका फल खाऊं, इसलिए सबकी उंगली दूसरों की तरफ चली गई है कि दूसरे इस बात में ठीक नहीं, इसलिए मैं परेशान हूं। लेकिन आज अंगुली अपने तरफ लेकर के जानी है। तो रिश्तों को करेक्ट करने के लिए सबसे पहले चेक करेंगे अपने ईगो को। आज रिश्तों में जो अभिमान आया है, उसने हमारे अंदर दूरियां पैदा कर दी हैं। रिलेशन में सीनियर्स भी हमारे साथ होते हैं, जूनियर्स भी होते हैं, वर्क प्लेस पर भी हमारा रिलेशन होता है, तो फैमिली में भी होता है, तो सोसाइटी में भी होता है, फ्रेंड सर्कल में भी होता है। किसी भी तरह के रिश्ते को खराब करने वाला कीड़ा है ये ईगो। ईगो को हिंदी में मैं बोलते हैं, मैं, और मैं के लिए इंग्लिश में ऑलवेज सिंगल आई लिखा जाता है, कैपिटल आई। और ये कैपिटल आई जहां भी आएगा सेंटेंस में, आगे आए, बीच में आए, पीछे आए, ये कैपिटल ही आता है। और ये डंडा सब बीच में खड़ा हो जाता है, जहां आई आया मैं ईगो, वहां तेरे और मेरे के बीच में दीवार आ गई। इस आई को हम सबलाइम कर दें, लिटा दें, तो ये ब्रिज बन जाएगा। सरेंडर कर दें, आई को वी कर दें, जहां ध्यान रहता है ये मैंने कहा, मेरा माना जाना चाहिए, नहीं, हम मिलकर एक दूसरे की मानेंगे। एक ने कही, दूसरे ने मानी, समझो दोनों ब्रह्म ज्ञानी। इसके लिए दो तीन काम करेंगे। किसी भी रिश्ते में एप्रिसिएशन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है, तो याद रख लेंगे। अगर रिश्ता सच में मीठा चाहते हैं, तो एप्रिशिएट अदर्स इवन फॉर स्मॉल थिंग्स। आज के जमाने में एप्रिसिएशन पसंद तो हमको बहुत है, बहुत मीठी लगती है, सब कहें आप कितने अच्छे हो, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है दूसरों का एप्रिशिएट करना, जिसमें हम सब कंजूस हो गए हैं। जब भी दूसरे पर आंख जाती है तो इस बात पर चली जाती है आप किस किस बात में खराब हो, कितने अच्छे कहना भूल जाते हैं। इसलिए रिश्तों में खटास आती रहती है, तो एक आदत बना लीजिए, मन बुद्धि में नोट कर लीजिए छोटा हो आपसे बराबर का हो या बड़ा हो, एक दिन में कुछ न कुछ बातों पर उनको जेन्युइनली अप्रिशिएट जरूर करो, बटरिंग नॉट रिक्वायर्ड बट जेन्युइन अप्रिसिएशन बहुत बड़ा जादू का काम कर सकती है, इसमें कंजूस नहीं बनो। इसको हाथ से पैसा नहीं दे सकते, आजकल कुछ सुविधाएं नहीं दे सकते कोई बातों में, आप मजबूर हैं, जो आप करना चाहते रिश्ते के लिए नहीं कर पा रहे हैं, उस सब के बावजूद भी अप्रिशिएट तो कीजिए बाय हार्ट। एक दूसरे की बातें उधेड़ने की कोशिश नहीं करो, तुमने ये गलत किया, वो किया, तब किया, अब किया। हाँ, कोई मौके है, कोई रिश्ते में, जैसे पेरेंट्स और चिल्ड्रन के रिश्ते में कहीं उनकी कमियां पॉइंट आउट करनी पड़ती है, पर एक बात ध्यान रखना, किसी की कमी सुनानी हो अकेले में सुनाना, सबके बीच नहीं सुनाना, उनका दिल टूट जाएगा, चाहे आपका लाडला बच्चा ही क्यों ना। हर एक के दिल के अंदर एक सेंसिटिविटी है, आजकल ईगो हर्ट होता है उनका, अपना ईगो सरेंडर करना, लेकिन दूसरे के ईगो को केयर करने की जरूरत पड़ती है, तब उसका ईगो छुड़वाया जा सकता है। किसी की कमजोरी सुनानी है अकेले में सुना देना, अच्छाई सुनानी है सबके बीच सुना देना, और कमजोरी निकलवानी है तो उसको सुनाने से पहले 10 बार उसकी अच्छाई सुनाना, एक एनेस्थीसिया तो लगाओ फिर ऑपरेशन करो। हम कमजोरी फटाक सुना देते हैं, अप्रिशिएट करने से पहले 100 बार सोचते हैं, और लगता है कहीं सिर ना चढ़ जाए, नहीं, जो जहाँ चढ़े हुए हैं वहीं रहेंगे, ज्यादा सोचो नहीं। एक टॉनिक सबको देते चलो, बड़े बड़े बिगड़े रिश्ते भी, टूटते रिश्ते भी इससे सुधरते देखे हमने। एक भाई साहब का एग्जाम्पल सुनाती हूँ, साइकेट्रिस्ट बी के, उन्होंने बताया उनका क्लिनिक है, उनके क्लिनिक पर एक भाई साहब आए, बहुत बड़े ऑफिसर थे, और साइकेट्रिस्ट तो बहुत महंगा डॉक्टर होता है, बातों का पैसा लेता है। कहते वो मेरे पास आए और कहने लगे, बहुत परेशान, इतना दुखी हूँ कि अब डाइवोर्स लेना चाहता हूँ। उन्होंने डिटेल पूछा तो पता चला 15 साल हुआ है शादी को, आईएएस ऑफिसर है, वाइफ भी आईएएस ऑफिसर है, और दोनों की बातों का सार था, दोनों में सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, और दोनों समझते हैं तेरे से मैं अच्छा, तेरे से मैं अच्छी, और दोनों सच में अपने अपने फील्ड में बहुत अच्छे, अपने अपने फैमिली मैनेजमेंट में भी बहुत एक्सपर्टीज है, एक बेटा भी है, पर ईगो क्लैश, एक दूसरे के लेग पुलिंग, सिद्ध करते रहते तुम गलत मैं ठीक। तो कहते मैंने उनकी सारी बात सुन करके कहा कि देखो, इस उम्र में आके डाइवोर्स लोगे, बच्चे का क्या हाल होगा, और शादी भी करोगे बदनामी होने वाली है। एक आपको दवाई बताता, कामयाब बहुत है अगर आजमाओ तो। बोले बोलो क्या है? कहते आप अपनी वाइफ को रोज छोटे बड़े सब कामों के लिए अप्रिशिएट किया करो। पहले कभी किया है? कहते क्यों करूं, ऐसी है वैसी है वैसी। कहते अच्छा अभी किया करो। भाई साहब कहने लगे, डॉक्टर साहब कोई फायदा होने वाला नहीं है, और सिर चढ़ जाएगी। उन्होंने कहा मैं आपका डॉक्टर हूँ, फीस ले रहा हूँ, जो दवाई बता रहा हूँ आजमाओ तो सही। कहते ठीक। हफ्ते बाद वापस आए, मुंह लटका हुआ था। डॉक्टर साहब ने पूछा क्या हुआ? कहते क्या हुआ, सब कुछ गड़बड़ हुआ, जिस दिन आपके पास से गया था रास्ते में मार्केट गया, बारिश आई, थोड़ा भीग गया, घर जाते तक बुखार हो गया, और मेरी वाइफ की आदत है किसी बीमार की सेवा बहुत करती, उसने ऑफिस से छुट्टी ले ली, बहुत सेवा करने लगी, डॉक्टर बुलाइए खिला वो बिला। आपके कहे अनुसार मैं हर बात पर बोलने लगा थैंक्स, इतनी अच्छी कॉफी बनाई, थैंक्स, तुमने मेरा सिर दबाया, थैंक्स। इतने दो तीन दिन जब तक बीमार था वो सुनती रही, चौथे दिन चिल्ला के बोली, ये चापलूसियां आपकी बच्चों के साथ चल सकती है, मेरे साथ नहीं चल सकती। कहते फिर आपने क्या किया, कहते क्या किया, अप्रिशिएट करना बंद कर दिया, चापलूसी थोड़े करूंगा उसकी। डॉक्टर साहब ने कहा, देखो जिसको 15 साल भूखा रखा हो, अचानक खीर पूड़ी खिला दो तो पेट खराब होगा ही ना। अभी धीरे धीरे करके यही काम करना, 1 महीना और करो, पर ध्यान रखो बटरिंग नहीं, जेन्युइन जो जो बात है उस पे आप बिना थके करते चलो, क्योंकि दूसरा ऑप्शन डाइवोर्स वाला भी बहुत खतरनाक है, कोई अच्छी बात नहीं है। परिवार तोड़ देना, रिश्ते आसानी से जोड़े नहीं जाते हैं तो तोड़ क्यों दें, तो मुंह लटका के चले गए। 1 महीना बाद दोनों आए, कपल, दोनों के हाथ में बड़ा बड़ा बुके था डॉक्टर साहब के लिए, और अब दोनों ने फैसला कर लिया था कि अब हम तलाक नहीं लेंगे। किस चीज ने काम किया, उन्होंने बताया, आपस में ही बताया। थोड़े दिन तो कहती मैं सुनती रही, ये अप्रिशिएट कर रहे हैं, कर रहे हैं, कर रहे हैं। आखिर उसको भी शर्म आई, नहीं नहीं आप भी इस बात में बहुत अच्छे हो, नहीं ऐसी बात नहीं, मैं इतनी भी अच्छी नहीं हूँ जितना आप कह रहे हो। धीरे धीरे रिश्ते मधुर होने लगे। तो अप्रिशिएट अदर्स इवन फॉर स्मॉल थिंग्स। दूसरी बात हम याद रखेंगे, विनम्रता धारण करें, हम्बल हो जाएं। कहते हैं झुकते वही हैं जिनमें जान होती है, अकड़े रहना तो मुर्दे की पहचान होती है। इसलिए अपनी रिजिडिटीज का त्याग करें। आजकल चॉइसेस का जमाना, छोटी छोटी बातों में मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे यही बहुत पसंद है, इन बातों में हम अपनी शान समझते हैं, सेंसिटिव होना बहादुरी समझते हैं। किसी भी बात में दूसरे की मीन मेक करते रहना अपने विजडम समझते हैं, अपने को इंटेलिजेंट शो करते हैं, लेकिन अभी झुकना सीखे। झुकता वही है जो बहुत शक्तिशाली है। विनम्र होने में 100 वैल्यूज यूज करनी पड़ती है, विनम्र होने में बहुत बुद्धिमानी यूज होती है, विनम्र होने में अंदर से सहन शक्ति की जरूरत, क्षमा शक्ति की जरूरत, सच्चे प्यार की जरूरत पड़ती है। जो अंदर में शांत है, धैर्यवान है, वो विनम्र हो सकता है। तो आप कहेंगे इतने गुण कहाँ से लाए, नहीं, आत्मा एक स्पिरिचुअल एंटिटी है, गुणों की खान है। सिर्फ एक कमांड चाहिए कि मुझे हम्बल होना है, अंदर से वैल्यूज जाग जाती हैं, जो ताले में बंद थी वो जाग जाती हैं। जैसा सोचेंगे वैसी शक्तियां प्रकट होने लगती हैं। तो आप संकल्प तो कीजिए कि आज से एक दूसरे के साथ हमने हम्बल होके व्यवहार करना। दो तरह की पर्सनैलिटीज होती, एक कोकोनट पर्सनैलिटी, एक मैंगो पर्सनैलिटी। कोकोनट क्या है, हार्ड आउटसाइड, सॉफ्ट इनसाइड, न्यूट्रिशियस वाटर, डेलिशियस फ्रूट, बट नॉट इजीली अप्रोचेबल। मैंगो, मैंगो पर्सनैलिटी क्या चीज है, हार्ड इनसाइड, सॉफ्ट आउटसाइड, इजीली अप्रोचेबल। नारियल नहीं बनो, मैंगो बनो। नारियल बहुत सख्त चीज है, इसलिए भारतीय संस्कृति में कोई भी शुभ काम की शुरुआत में नारियल फोड़ दिया जाता है। नारियल फोड़ देना माना जिंदगी को शुभ करना है, तो अपने ईगो को फोड़ करके विनम्र हो जाओ तो अंदर का जो डिलीशियस फ्रूट एंड वाटर है वो अवेलेबल हो जाएगा। तो मैंगो बनो, अंदर से हार्ड जरूर रहो अपने डिसिप्लिन में, अपने एथिक्स में, अपनी प्योरिटी में, लेकिन बाहर से इजीली अप्रोचेबल, सबके साथ कोऑपरेटिव, एडजस्टिव। एडजस्टिव वही होता है जो अपनी चॉइसेस को ओवर पावर नहीं करता है, मोल्डिंग नेचर होती है जिसकी। ये वैल्यूज हमारे जीवन के डायमंड्स हैं, इन पर जरूर 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 हम ध्यान देंगे। और रिश्तों में शक, अनुमान, वहम बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। एक दूसरे पर शक करने से दूध को जहर समझ लेते हैं, और उसका एक कारण होता है, आज किसी ने हमारी चॉइस को स्वीकार नहीं किया, हमारे को रिस्पेक्ट नहीं दिया, हमारे अकॉर्डिंग नहीं चले, हमारे मन की स्लेट पर उनकी इमेज मैली हो जाती है, उनकी अच्छाइयां भी बुराइयों के रूप में दिखने लग जाती हैं। इसलिए किसी की भी बातों पर ज्यादा दिमाग के घोड़े दौड़ा करके एजम्पशंस को जिंदगी में नहीं आने दो। शक वहम का दुश्मन है, इसके बजाय एक दूसरे में विश्वास, विश्वास, विश्वास पैदा करेंगे तो विश्वास में ताकत है पत्थर को पिघला देने की। और अगर एक दूसरे को विश्वास से देखेंगे तो उनकी 100 गलतियां माफ कर सकेंगे, शक से देखेंगे तो उनकी सारी अच्छाइयों को भी पलट करके पाप मान लेंगे। और ऐसे में जिसके अंदर शक और अनुमान होता है उसका दिमाग बहुत बोझिल रहता है, ये अपने लिए एक बहुत बड़ी सजा है। अपने को इस सजा से मुक्त करो तो खुशी आएगी जीवन में। इसलिए शक वहम जो अंदर पाल करके रखे हुए हैं, कभी किसी की कोई कमी देखी तो अंदर बैठ जाता है कि अब बाकी काम भी इस तरह की कमियों वाला करता होगा, को रिलेट कर देते हैं। को रिलेट करने के बजाय उसी टाइम अपनी स्लेट को साफ कर देना चाहिए कि हर एक कोई जिंदगी में पुरुषार्थी है, आज उसके अंदर ये कमी है जरूरी नहीं कल भी हो, उसने हो सकता है निकाल दी, हम उसको उसी कमी की नजर से देख रहे हैं। जैसे दूसरा अपने घर का कूड़ा निकाल के फेंक देना चाहता है और हम अपने घर में ले आए, ऐसा कूड़ा किसी का हम अपने अंदर न रखें तो अच्छा है। कुल मिला के दूसरे की गलतियां जल्दी से माफ कर देनी चाहिए। माफ करने वाला हमेशा बड़ा होता है सजा देने वाले से। आज के इंटेलिजेंट ब्रेन दूसरे को हर बात का सबक सिखाना चाहते हैं, ये भूल गए हैं कि दूसरों को सबक सिखाते सिखाते अपनी जिंदगी से सुख शांति के सबक भूलते चले जा रहे हैं। तो दूसरों को सबक इसमें न पढ़ाएं, सिर्फ खुद खुद को ठीक रख दे। दूसरे के चेंज की जितनी इच्छा होती है उससे ज्यादा अपने को चेंज करने की इच्छा रखे। जैसे 50 लोगों को कहा जाए सीधी लाइन में खड़े हो जाओ, वो 50 के 50 एक दूसरे को सीधी लाइन में खड़ा करने का जोर लगाते रहें, बताओ वो लाइन कब तक सीधी होगी? एक ही काम करना था, खुद सीधे खड़े हो जाना था बस। हर एक यही सोचे मैंने लाइन में खुद सीधे खड़े होना है। दूसरे की गलतियां निकालने से पहले सिर्फ ये देखना है कि मैंने तो कोई गलती नहीं की, सिर्फ इतना सा देख लेंगे तो जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। एक भाई बिल्कुल डेथ बेड पर था, अचानक उसको अपना एक दोस्त याद आया जिसके साथ लंबे काल से अन बोला था, वो बुलाता नहीं था उसको, कोई गलती हो गई थी उससे। अब उसको लगा मैं बचूंगा नहीं, वही अपना दोस्त याद आया, उसको बुलाया कि अब तो मेरे दिन पूरे हो रहे हैं, आओ जरा मिलके जाओ। दोस्त आया, हॉस्पिटल में थे, दोनों के आंसू आए, गले लगे, मिले। अच्छा दोस्त तूने मुझे माफ कर दिया ना? हाँ भाई अब तो जाने की बारी है, कही सारी कही सुनी माफ, बिसरा देना सारी गलतियां, ठीक है। और बातचीत करते करते वो दोस्त विदाई लेकर जाने लगा, दरवाजे तक ही पहुंचा तो जो बीमार था उसने वापिस आवाज लगाई, दोस्त सुनो। हाँ, कहते वैसे तो उम्मीद नहीं है कि मैं बचूंगा, पर डॉक्टर कहते हैं 1% है, और अगर मैं बच गया फिर ये माफी मानी नहीं जाएगी, हम फिर से नहीं बोलेंगे। सोचो क्या गति है इंसान की, इतनी रिजिडिटी है। हम दूसरे की गलतियां माफ करना नहीं चाहते हैं, पर जब अपने से गलती हो जाती है तो यही उम्मीद रखते हैं दूसरा उसको जरा भी माइंड नहीं करे, अगर करे तो उसको याद दिलाते हैं आपसे भी तो गलती होती है ना, आपसे भी तो होती है ना। हम उसको चेंज नहीं करने चाहते, इसलिए अब परिवर्तन का दौर है, सारी सोसाइटी में चेंज हो रहा है, पूरे वर्ल्ड के सिनेरियो में चेंज हो रहा है। ऐसे टाइम पर बड़ी बड़ी पावर्स फेल होती नजर आएंगी, इकोनॉमिक पावर, फिजिकल पावर, जितनी बाहरी शक्तियां हैं, पॉलिटिकल पावर, मेंटल पावर जीत जाएगी। उसके लिए स्पिरिचुअल पावर को यूज करना होगा, और स्पिरिचुअलिटी का पहला मैसेज है मॉरल वैल्यूज को एडॉप्ट करो कर्मों में। अगर आप अच्छा मेडिटेशन करना चाहते हैं तो पहले मन साफ चाहिए, मन निर्मल होता है डिवाइन वैल्यूज से, जीवन को सद्गुणों से भर दो। आप सब एक लिस्ट बनाना वैल्यूज की, नम्रता, मधुरता, संतुष्टता, सहनशीलता, सत्यता, धैर्यता, फिर अपने से पूछना मैंने इन वैल्यूज को कितनी वैल्यू दी है। जितना इन वैल्यूज को वैल्यू देंगे आपकी लाइफ वैल्यूएबल हो जाएगी, आपके रिश्ते मीठे हो जाएंगे। चौथी बात, आज के जमाने के दौर को देखते हुए, हालात को देखते हुए अपनी एक्सपेक्टेशंस को कम कर दीजिए। बहुत इच्छाएं भगवान ने आप सबकी पूरी की, जब से पैदा हुए बड़े हुए बहुत अच्छी अच्छी एक्सपेक्टेशन रखी भी होंगी और उसको क्वालिफाई भी किया होगा, और हमें ये लगने लगा जो चाहते हैं करने से मिल जाता है। वक्त बदल गया है, हम अपनी एक्सपेक्टेशंस पर भी रिजिड होना सीख गए, क्योंकि साइंस के जमाने ने हमें बहुत साधन और सुविधाएं दी हैं। अब जरूरत है कुछ त्याग करने की, क्योंकि इससे खुशी बढ़ेगी। आज आप एक्सपेक्ट करो एक चीज, बाहर कर्फ्यू लगा मिलती नहीं है। आज एक्सपेक्ट करो आप रिश्तों में किसी भी तरह की कोऑपरेशन, उनकी अपनी लिमिटेशंस हैं, वो मिलती नहीं है। आज आप अपनी फिजिक से कुछ एक्सपेक्ट करो, कई बार लिमिटेशंस है, मिलती नहीं है। इसलिए समझदारी इसी में है कि एक्सपेक्टेशंस लिमिटेड कर दो, तो सुख शांति बढ़ जाएगी. When expectations are 100%, then satisfaction is zero. When satisfaction is 100%, then expectations are zero. इसलिए एक्सपेक्टेशन आई नो आप जीरो नहीं कर पाएंगे, कम तो कर सकते हैं. उसके लिए भी एक काम करेंगे, अपनी एक्सपेक्टेशंस की एक लिस्ट बनाएंगे और उस लिस्ट को फिर से रिवाइज करते हुए देखेंगे किस किस के बिना इमरजेंसी है, अभी किस किस के बिना काम चल सकता है, उसको कट करते जाओ. नेसेसिटीज ऑलवेज थोड़ी होती हैं, एक्सपेक्टेशंस ज्यादा होती. और याद रखो एक्सपेक्टेशंस दुख का कारण है. जिसको कहा गया है शास्त्रों में, इच्छाएं दुख का कारण है, इच्छा मात्रम अविद्या. हे अर्जुन, अगर सुखी होना चाहता है तो इच्छाओं का त्याग करो. पूरा ना त्याग कर सको उसको कम करो, मॉडिफाई करो. जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो रही उनकी रिप्लेसमेंट निकालो. समझो आपकी एक्सपेक्टेशन है सामने वाला आपको रिगार्ड दे, प्यार दे, टाइम दे, आपकी बात माने, आपकी एक्सपेक्टेशन है. अब इसको कैसे रिप्लेस करेंगे? इसकी रिप्लेसमेंट है जो डिमांड कर रहे हैं, उसी को देना शुरू कर दो. प्यार चाहिए, शिकायत है, कम मिलता है. आप देने वाला पार्ट बढ़ा दीजिए, थोड़े टाइम बाद बढ़ के वापिस आ जाएगा. आपको रिस्पेक्ट चाहिए, छोटों को भी, बराबर वालों को भी. जितनी दे रहे थे कहते हम तो देते, जितनी दे रहे थे और बढ़ा दीजिए. जब नहीं मिलती तो मन में जो कुड़कुड़ होती है वो करना बंद कर दीजिए. उनको दो दुआएं और भेज दीजिए, भगवान आपका भला करे. वो भला मुड़ के आपके पास वापिस आ जाएगा, तर भला होगा भला. इकोसिस्टम है, इन लॉज को यूज करो. शांति चाहिए, शांति बांटने लगो. सुख चाहिए, सुख बांटने लगो. करके देखिएगा, बहुत ऑथेंटिक बातें सुना रही हूँ, लाइफ टाइम एक्सपीरियंस की कहानी सुना रही हूँ. करके देखा है इसलिए सुना रही हूँ. नेक्स्ट बात, क्रिटिसिज्म. रिश्तों में बहुत पेन आता है जब कोई हमको क्रिटिसाइज करता है. और फिर हम क्या करते हैं? उसको क्रिटिसाइज उसके सामने ना कर सके तो पीठ पीछे करने लग जाते हैं. बात तो बराबर की टक्कर हो जाती है. इसलिए क्रिटिसिज्म जो हमारा करता है, समझो आपने कोई का सच में भला किया, वो सच में बुरा करते हैं. बैक बाइटिंग, इतना आपका नाम बदनाम कर देते हैं, लेग पुलिंग करते हैं, इतना तंग करते हैं. अब आप क्या करो? आप उसके लिए कुछ बोलते भी नहीं है पर आपके इम्प्रेशन खराब होते जाते, आप हर्ट हो रहे, क्या करें? अपना आजमाया हुआ बताती हूँ. जस्ट अप्रिशिएट. कैसे? क्रिटिसिज्म का उत्तर कैसे दें? उस व्यक्ति के सामने उसको अप्रिशिएट करेंगे शायद ना चले. आपके कोलीग हैं, आपके बड़े हैं, बॉस हैं, आपके रिश्तों में कोई ऐसे लोग हैं आपको क्रिटिसाइज बहुत करते हैं, इसको हम कहते हैं वेलकम योर क्रिटिक्स, डोंट माइंड. निंदक नियरे रखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करे सुभाए. पहली बात तो समझो मेरा साइकेट्रिस्ट है. साइकेट्रिस्ट बड़ी सी फीस लेके दो चार कमियां बता देता है, ये ठीक कर लेना. और मेरा क्रिटिक मुझे मुफ्त में वो बातें सुना रहा. फिर भी क्रिटिक की हीलिंग के लिए जो लोग उसको जानने वाले हैं उनके सामने उनको अप्रिशिएट कर, भले वो ना सुन रहे हो लेकिन उसके जानने वालों के आगे उनको अप्रिशिएट करते करते उनके कान तक आवाज पहुंच जाएगी कि आप दिल से उनको पसंद करते हैं। देखिए इन बातों में थोड़ी मेहनत जरूर है, थोड़ी है, ज्यादा नहीं है, पर ये भी हम लोग जानते हैं कि बढ़िया चीजें सस्ती नहीं होती। सुख शांति बढ़िया वस्तु, प्यार घर में, रिलैक्सेशन संबंधों में, मधुरता बहुत बढ़िया वस्तु है। तो इसके लिए अगर थोड़ी मेहनत कर भी ली तो क्या महंगी है। रिश्तों के लिए तो हम अक्सर कहते मिलते हैं ना कि हमने 20 साल लगा दिए, हड्डियां लगा दी, फिर भी ऐसा एक दूसरे को रिश्तों में कहते तो है ना, आपके लिए ही तो जी रहे, जिसके लिए जीवन दिया उसके लिए थोड़ा त्याग किया, थोड़ा सहन किया, हर्जा नहीं, इसके लिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट की पावर चाहिए, जिसको हम समाने की शक्ति कहते हैं, पावर टू अकोमोडेट। जिससे प्यार है उसकी कमियां समा लेनी चाहिए। घरों में अगर एक की गलतियां दूसरे को सुनाते रहेंगे तो वातावरण खराब होता है। कोई कोई घर में तो माता जी बेटे के आने का इंतजार कर रही होती है, आए तो सही जरा बहू की सुना, ताकि उसके दिल से बहू का इम्प्रेशन खराब हो जाए। बहू रानी इंतजार कर रही होती है माता जी की गलतियां सुनाओ तो सही। कहीं मम्मियां इंतजार कर रही होती है भाई साहब आए तो बेटे के कारनामे सुनाओ तो सही। नहीं, थोड़ा बहादुर बनो, दूसरों की कमियां पेट में समा जाओ, फूलों की माला बनाओ, एक दूसरे के गुण सोचो, गुणों का दान दो, तो आप महसूस करेंगे घरों का, वर्क प्लेस का वातावरण बदलता है। अप्रिशिएट तो करना ही करना है, लेकिन अवगुण किसी को सुनाना नहीं है। व्रत लेना हो अपने मन को चिंता इस तरह की अनसर्टेन फीलिंग से बाहर निकालना होगा। उसके लिए ईश्वरीय शक्ति अपना साथ देती है। भगवान पर भरोसा, न सिर्फ भरोसा लेकिन उसे अपना साथी बना लीजिए, और थैंकफुल टू गॉड। हम आज के जमाने में क्योंकि मुश्किलों को झेल रहे हैं पर ये भूल गए कि अभी भी हमारे पास औरों से बहुत कुछ बहुत अच्छा है। भगवान को शुक्रिया करना भूल गए हैं, भगवान की गलतियां निकालने में बहुत लोग बहुत समझदार हैं, आराम से कह देते हैं हे भगवान ये तूने क्या किया, तो पूरी दुनिया संभालता। आज अपने को कोई कह दे आपने क्या किया, माइंड होता उसको हम बड़े आराम से कह देते हैं दुनिया बनाने वाले दुनिया क्यों बनाई। एक आदत डाल लीजिए एक दिन में 50 बार थैंक्स टू गॉड। हम उसको प्यार से बाबा बोलते हैं। भगवान कहो तो ऑफिशियल लगता है, बाबा कहती हूँ तो क्लोज लगता है, मेरा है, उसको मेरेपन के अधिकार से बहुत रिगार्ड से श्रद्धा से कह देना चाहिए थैंक्स बाबा, आपने मुझे अच्छा दिमाग दिया, अच्छी हेल्थ दी, अच्छा परिवार दिया, एजुकेशन अच्छी दी, अर्निंग इतनी तो दी, दाल रोटी तो सभी आराम से खा रहे हैं उससे ज्यादा ही है, इसलिए जो थैंक्स करता है उसको लोग भी थैंक्स करते हैं, जो भगवान का शुक्र गुजार नहीं है उससे लोग भी शुक्रिया नहीं करते हैं। एक सेठ जी थे, यहाँ से गुजर जाते लोग बहुत दुआ सलाम करते थे। सेठ जी बदले में नमस्ते राम राम नहीं बोलते थे, जो भी कुछ कहे उसको कह देते थे, अच्छा जी कह देंगे। लोग अंदर सोचते थे पता नहीं ऐसा क्यों बोलते हैं, बड़ा आदमी है, सामने कुछ कहते नहीं थे। एक बार उनके एक दोस्त ने पूछा, सेठ जी ये क्या बोलते हो आप हमेशा, कोई नमस्ते राम राम बोले वही उत्तर दिया जाता है, ये आप क्या बोलते है। सेठ जी जोर जोर से हंस पड़े, कहते आपको मालूम नहीं, आज से 30-35 वर्ष पहले मैं एक गरीब आदमी था, कुछ नहीं था मेरे पास, अब मेरे हाथ में लक्ष्मी आ गई है तो सब लोग बहुत दुआ सलाम करते, तो मैंने घर में एक लक्ष्मी मैया की मूर्ति रख दी, सारे दिन जितना जितने लोग मेरे को हेलो हाय करते मैं गिन लेता हूँ, और रात को जाके उस मूर्ति के आगे कहता हूँ, ए लक्ष्मी मैया आपको इतने लोगों ने सलाम भेजा, जब से आप घर आई हो सलाम आने लगे हैं, जब आप चली जाओगी सलाम भी चले जाएंगे। तो इसलिए ध्यान रहे, आपको भी जो मिला है उसी का दिया है, कोई बड़ाई आपको मिली है उसी ने दी है, जो मिला है थैंकफुल होने से आप लाइट रहेंगे, नहीं तो आप यही गिनते रहते क्या क्या नहीं मिला, भगवान जी को याद दिलाते रहते आपको कहा था ना ये काम नहीं किया, अरे जो जो है उसके लिए तो जरूर थैंकफुल होने की जरूरत है। इसलिए चार बातों से बचो रिश्तों में, बहुत खतरनाक है वो चार बातें, जिसको हम कहते हैं फैमिली को एंटर नहीं होने दो, वो चार को पैदा करने वाले चार तो भाई बहन है, चार भाई बहन की एक फैमिली में मम्मी डैडी भी, मम्मी डैडी का नाम बताऊं, फादर का नाम है मिस्टर डाउट, उन्होंने शादी की मिसअंडरस्टैंडिंग से, चार बच्चे पैदा हुए जिनका नाम दिया गया झाल, चार बच्चे झाल कास्ट दे दी गई उनको, JHAL, J for jealousy, H for hatred, A for animosity, L for leg pulling, ये दुश्मनों का परिवार है, इसको अपने प्यारे रिश्तों में आने मत दो, डाउट शक दोस्ती का दुश्मन है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ ही आता है, हर बात को मिसअंडरस्टैंड कराएंगे, और फिर उनके बच्चे पैदा होंगे जेलसी, जहाँ डाउट है जहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो सामने वाले की प्रोग्रेस के भी दूसरे मीनिंग समझ लेंगे, ये मुझे नीचे गिराना चाहते हैं, मुझे पीछे हटाना चाहते हैं, मैं इनको हटा के आगे बढ़ जाऊं, मिसअंडरस्टैंड क्रिएट हो जाएंगी, नफरत पैदा होती है दूसरे के अवगुणों को देख करके, फिर दुश्मनियां पैदा हो जाती हैं और लेग पुलिंग करने लग जाते हैं, ये वाली गेम खेलना बंद करना होगा, खेलते तो नहीं होंगे, लेग पुलिंग ऐसी चीज है, अपने आगे बढ़ने की शक्तियां यूज करने के बजाय दूसरे को पीछे हटाने में सारी शक्तियां यूज करने लग जाते हैं। अब दिलों को साफ कर दीजिए, अपने को हल्का कर दीजिए, एक दूसरे के लिए दुआओं के टोकरे भर भर के दीजिए, एक दूसरे के आगे बढ़ने की दिल में बधाइयां और शहनाइयां बजाइए, सारा अपना परिवार शक्ल बदल बदल के मिल रहे हैं, आज पड़ोसी दिख रहा है पिछले जन्म में क्या था, सगा भाई हो सकता है, आज कोलीग दिख रहा है, बॉस दिख रहा है पिछले जन्म में, वाइफ हस्बैंड पता नहीं क्या हो, शक्लें बदल बदल के अंदर तो रूहें हैं हम, डिवाइन एंटिटी हैं, इन मिट्टी के शरीरों के अंदर, इन पुतलों के अंदर तो ज्योतियां काम कर रही हैं। ये पुतले तो नाशवान है, बच्चे से बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, मर जाता है। अंदर अमर ज्योति आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेती है। याद रखें, ये रूहों की जर्नी है, संसार एक नाटक है। हम आत्माएं भाई भाई एक पिता की संतान सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं, संसार नाटक है। तो यहाँ जो एक्टिंग हो रही है इसको एक्टिंग करके रहने दीजिए, वही बन न जाइए। स्टेज पर रावण की एक्टिंग करने वाला अगर सच में रावण बनने पर आ जाए तो नाटक का क्या होगा? मम्मी हो या पापा हो, बहन हो या भाई हो, रोल प्ले कर रहे हो, मम्मी की एक्टिंग। आज मम्मी है, कहीं बहू है, कहीं बहन है, कहीं वाइफ है, अलग अलग रोल प्ले कर रहे हैं। रोल कॉन्शियस के बजाय सोल कॉन्शियस हो जाए। सोल कॉन्शियस जो होता है उसको अपने को हर नेगेटिविटी से विड्रॉ करना आता है। हर एक बात के लिए समझेंगे, अच्छा ड्रामा का रोल लेना, अच्छे से अच्छा प्ले करना। बीमार होना भी रोल है, तो फिट होना भी रोल है, तो पैसे की तंगी आना भी रोल है, तो पैसा ज्यादा आ जाना भी रोल है। रोल तो एंजॉय किया जाता है जिसका मर्जी। हर सामने वाले को देखिए, ऐसा है नहीं कि अपना एक रोल प्ले कर रहा। अब लाइट हो जाएंगे और अपने दिनचर्या में एक क्वालिटी टाइम हेल्दी थॉट्स के लिए निकालिए। क्वालिटी टाइम, एक हेल्दी थॉट्स की डायरी बनाइए जिसमें लक्ष्य रखिए 1 लाख पॉजिटिव थॉट्स मैंने कलेक्ट करने हैं। रोज का एक पॉजिटिव थॉट उसमें लिखो और उसको चर्न करो। आप पॉजिटिविटी में अमीर हो जाएंगे। दूसरा किसी भी तरह का अभाव खलेगा नहीं, माइंड नहीं होगा। और भोजन पर ध्यान दीजिए। चारों तरफ बहुत दुख दर्द का वातावरण है, हवा पानी मिट्टी सब में दुख भर गया है, खतरा भर गया है, डर। लोग डर से कमा रहे हैं, डर से खा रहे हैं, डर से जी रहे हैं। हवाओं में डर है, पानी में डर है। जो पानी आप पीते वो भी आपको डरा सकता है, इसलिए पानी चार्ज करके पीजिए। पानी सामने आए 15 सेकेंड, उसमें प्योर वाइब्रेशन डालो, उसकी तरफ आंखें करके फील करो। यहाँ सोल स्टार है, उसमें से पीसफुल रेज निकल के उसमें जा रही। ऊपर सुप्रीम लाइट है, सुप्रीम स्टार, उसकी प्योर पीसफुल लाइट उस पानी में जा रही। भोजन को चार्ज करके खाइए। थाली सामने आई, सिर्फ स्वाद और ये वो नहीं देखो, जीने के लिए खाना होता है, उसको प्रसाद बना के खाओ। पकाने वाला भी उसमें खुशी के वाइब्स डाले। कई जगह मेड्स नहीं आ रही होंगी, कई जगह और केयर करते हैं। चलो भोजन में कुछ कम ज्यादा मिलता होगा, होटल्स वगैरह बंद है, मॉल्स बंद है, घूमने मूवी शूवी नहीं जा सकते, पिज्जा बर्गर नहीं खा सकते। अरे दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ। प्यार से तो पकाओ ना, उसे तो थोड़ा भी पकाओ, लेकिन भगवान के लिए प्रसाद बना रहे हैं, फिर प्यार से खाओ। फील करोगे अंदर एनर्जी आती है, बहुत ज्यादा आती है, कम भी नहीं आती है। जैसा अन्न वैसा मन, जैसा पानी वैसी वाणी, लिंक है इसका आपस में। हवाएं भी अशुद्ध हो गई हैं, तो हवाओं को भी चार्ज करने की जरूरत है। उसके लिए मेडिटेशन का एक वातावरण क्रिएट करो घरों में। अपने घरों में रोज उस परम शक्ति को इनवाइट कर लिया करो। याद रहे ये त्रासदी उसकी तरफ से नहीं आई है, मनुष्य की अपनी भूलों से आई है, कर्मों का फल बनकर सामने आया है। तो हिम्मत से मुकाबला करना, किया हुआ सामने आ रहा है पर अभी भी श्रेष्ठ कर्म की ताकत भगवान देने को तैयार है, सिर्फ कनेक्ट होना है। पावर हाउस मना नहीं करता पावर देने को, पर कनेक्शन तो ठीक करना है ना। कोई कहे भगवान के होते इतना दुख क्यों, अरे सनलाइट बार है अपने कमरे में, काले पर्दे डाले हैं, खिड़कियां बंद की है, रोशनदान टाइट करके काला पेंट फेर दिया और अंदर बैठ के कह रहे हो सनलाइट क्यों नहीं देता। ऐसे ही सुप्रीम एनर्जी है, वो प्यार का सुख शांति का सागर है, लेकिन हमने अपने मन में काले पर्दे डाले हैं, कहीं अभिमान के काले पर्दे डाले हैं, कहीं पर हमने लस्ट के पर्दे डाले हैं, कहीं अपने एक्सपेक्टेशंस के जाले लगा दिए हैं, कहीं लेग पुलिंग में फंस गए हैं। जरा सिमट ना होगा, भीतर की ज्योत पहले जगानी होगी, फिर परम ज्योत के दर्शन होते हैं। भीतर चले, मिट्टी के पुतलों के भीतर हम असली वस्तु हैं। माथे से 2.5 इंच अंदर ब्रेन के बीचों बीच, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच इस शरीर को चलाने वाली शक्ति है आत्मा। तो अपने को कहना होगा ये आत्मा मैं हूँ। सोल इज द सोर्स ऑफ अनलिमिटेड डिवाइन लाइट। जैसे ही आप सोल कॉन्शियस होती है, कोकोनट ब्रेक होता है, अंदर से डिलीशियस पीस हैप्पीनेस ब्लिस रेडिएट होता है। इसलिए अपने से बात करने की आदत डालो, कम से कम 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम, इतना तो करना चाहिए। अपने को साइलेंट कर दीजिए, एकांत में बैठ जाइए, सेंस ऑर्गन्स से अपने माइंड को विड्रॉ करके इस बॉडी से अंदर डिवाइन लाइट पर फोकस करें और पॉजिटिव थॉट दें। आई एम पीसफुल, आई एम हैप्पी, आई एम ब्लिसफुल, आई एम स्ट्रॉन्ग पावरफुल, आई एम द चाइल्ड ऑफ सुप्रीम सोल। थॉट दें अपने को, मुझे बीमारी ना हो जाए ये सोचने की जरूरत नहीं, बीमारी को मैसेज चला जाता है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है। सुबह उठते ही आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग। सुपरफिशियल भी ये थॉट्स अंदर डाल देंगे, काम करेंगे। नेगेटिव थॉट्स का भोजन छोड़ना होगा, पॉजिटिव थॉट्स का भोजन लेना होगा। इट्स द नीड ऑफ द आवर। आप न करिए स्वर्ग न जाइए, अपने किए बिना होने वाला नहीं है। इसलिए मेडिटेशन सीखने के लिए अपने ऑनलाइन बहुत प्रोग्राम्स हैं, उसको स्विच कीजिए। शिवानी दीदी के बहुत लेक्चर्स हैं, उस पे जाइए, प्रैक्टिकल कीजिए। सुख शांति दूर नहीं है, सिर्फ पकड़ना होगा उसको। रिश्तों में एक दूसरे को प्यार दो, सत्कार दो, सहयोग दो, संतुष्ट रहो। देना बढ़ा दो, लेना घटा दो, प्यार बढ़ जाएगा। अभी चले थोड़ा 3-4 मिनट साइलेंस करते हैं, अंदर की यात्रा करते हैं। सीधे होकर बैठे जहां भी बैठे, सब बातों से अपने को विड्रॉ कर लें, बैक स्ट्रेट करके बैठे, मन के विचारों को समेट दें। पूछेंगे अपने आप से, कौन हूं मैं? जवाब देंगे, इस मिट्टी मिट्टी के शरीर के अंदर मस्तक के बीच मैं एक चमकीला स्टार हूँ। पूरी ऊर्जा को सिमट कर माथे पर आता देखो, फील करें पैरों से लेकर एनर्जी ऊपर आ रही है लेग्स की ओर, स्टमक की ओर एनर्जी ऊपर आ रही है बाजू से हेड की ओर, और पूरी एनर्जी सिमट कर माथे में आ गई, एक स्टार बन गई, ये मैं हूं, एक डिवाइन स्टार आत्मा, फुल ऑफ पीस प्योरिटी एंड हैप्पीनेस, रेडिएटिंग पीस प्योरिटी हैप्पीनेस। फील करो माथे वाले स्टार से शांत पवित्र प्रकाश निकल कर पूरे ब्रेन में जा रहा, फेस में आ रहा, बाजुओं में गया, पेट में गया, लेग्स में गया। ये प्रकाश सिर के बाहर निकल कर एक सर्कल बना रहा, माथे वाले स्टार से आ रहा है। मैं शांत आत्मा हूँ, पिता परमात्मा की संतान हूँ। कहाँ है वो? ऊपर की ओर, बुद्धि को ऊपर ले जाएं, लोभ से ऊपर, सूर्य चांद सितारों से बाहर, ब्लू स्काई से बाहर, एक रेड स्काई, परम धाम जहाँ दूर तक लाल प्रकाश फैला, उसमें परम पिता की ज्योत जग रही है। जैसे मैं आत्मा स्टार हूँ, मेरे पिता परमात्मा भी परम ज्योति सुप्रीम स्टार है। He is ocean of peace। उनसे शांति का प्रकाश निकल निकल कर दूर दूर तक फैल रहा है, उनकी गहन शांति की लाइट एक शावर के रूप में मेरे ऊपर आ रही है, मेरे अंदर समा रही है। He is my father। मैं आत्मा हूँ, वो परमात्मा है, मैं बच्चा हूँ, वो पिता है। शांति सागर, उनकी शांति करके वाइब्रेशन मेरे ऊपर उतर रहा है, अंदर समाता जा रहा है। मन की आंख को फोकस करें, लोक के पार लाल प्रकाश में जगती परम ज्योति पर, और उनसे बरसती शांत शक्तिशाली किरणों पर, किरणें बरसने दें, अंदर समाने दें।
हेलो हेलो हेलो,
ओम शांति,
ओम शांति।
हेलो।
हेलो।
हाँ ओम शांति।
हाँ हेलो।
हाँ रश्मि
ओम
गुप्ता जी, रश्मि गुप्ता जी वोटर थैंक्स करेंगे। किसी को कुछ
धन्यवाद।
प्रश्न पूछना है, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते
हाँ
हैं दीदी
पूछना
से।
तो
हाँ
है ही।
जी, तो आप कर सकते हैं
हाँ
और सभी वीडियो ऑन करें तो अच्छा रहेगा।
मेरा वीडियो।
हेलो हेलो।
हेलो। हाँ हेलो। हाँ
हाँ पूछिए दीदी से पूछिए।
दीदी
हेलो दीदी, नाम लीजिए।
जी
पैरा
हेलो
रोटी दीजिए। हाँ दीदी।
जी जी बोलिए।
हाँ ओम शांति दीदी।
ओम शांति।
हाँ दीदी, मेरा प्रश्न है कि हम सब माहौल में रहते समय, हेलो,
जी हाँ जी हाँ जी
हमारे घर में रहते, हाँ मैं एक कुमार हूँ और हमारे घर
जी
में कोई भी ज्ञान सुनता नहीं है, बिल्कुल उसको मालूम ही नहीं पता। ओम
जी
शांति दीदी। ओम शांति।
बोलिए।
हेलो। ओम शांति के बारे में ब्रह्म, हाँ ब्रह्म कुमारी के बारे में कुछ मालूम नहीं, तो मैं कभी कभी बीमार पड़ने के बाद वो सोचते कि आप तो वीक लगते हो, आपका शादी करना चाहिए। उनके माता जी भी बहुत सोचती रहती है, तो इसके लिए क्या
ये
कीजिए।
प्रोग्राम तो अभी कॉलेज के टीचर्स के लिए है या बीकेस के लिए?
नहीं वो तो है,
सारे सुनने वाले
लेकिन
अभी बीकेस तो नहीं है ना,
नहीं टीचर्स है इसमें कुछ।
बाकी तो कॉलेज के टीचर्स है ना, सभी
हाँ हाँ टीचर्स है। टीचर्स
सभी बीके तो नहीं है।
नहीं, सभी नहीं है।
ओके, तो इस क्वेश्चन का फिर आपको अलग आंसर करेंगे, आप फोन पे अलग पूछ लीजिए। बाकी तो मेन बात है आपकी अंदर जितना मेडिटेशन की पावर होगी, अंदर जितना आप स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले होंगे और उनको ठीक कोऑपरेट करते रहेंगे तो आपकी बीमारियां भी आप हैंडल कर पाएंगे। तो उनको डाउट सिर्फ तब होता है जब आपने पूरी शक्ति अपने अंदर नहीं भरी है। अगर आप शक्तिशाली नजर आएंगे तो उनको आपको खुश देख करके ठीक लगेगा और उनके क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा।
ओके थैंक यू।
और कुछ होगा तो देरी से अलग पूछ सकते।
गुप्ता मैडम, व्हाट ऑफ थैंक्स।
धन्यवाद भांजे सर। माननीय ब्रह्म कुमारी अनिता दीदी जी तथा ब्रह्म कुमारी रजनी दीदी जी को मेरा चरण स्पर्श तथा आदरणीय प्राचार्य डॉक्टर दुनतुलवा सर, सहकर्मियों तथा अन्य श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम। आज के इस सत्र का आभार प्रदर्शन का कार्य मुझे सौंपा गया है, इसलिए मैं अपने आप को सम्मानित महसूस कर रही हूँ। आभार प्रदर्शन को आगे बढ़ाते हुए सर्वप्रथम मैं माननीय ब्रह्म कुमारी अनिता दीदी जी को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने अपनी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद हमारा निमंत्रण स्वीकार किया और हमें इस अति साधारण से दिखने वाले किंतु अति कठिनाई से अपने निजी तथा व्यावसायिक जीवन में पालन करने वाले गूढ़ विषय पर संबोधित किया। समय चाहे कोरोना ग्रसित हो या कोरोना रहित, हम सभी के आपसी मधुर संबंधों में समय समय पर कटुता अपना असर दिखाती है, किंतु इसी कटुता से संबंधों को कैसे बचाना, मधुरता को कैसे कायम रखना आपने हमें सिखाया। दीदी, आपका सादगी भरा जीवन, सौम्य वाणी तथा सरल शब्दों से भरा यह व्याख्यान हम सभी श्रोताओं के मानस पटल पर एक अमिट छाप छोड़ेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं कृतज्ञ हूँ माननीय ब्रह्म कुमारी रजनी दीदी जी की नागपुर केंद्र से तथा मेरे सहकर्मी श्री कैलाश वांदे जी की, जिन्होंने हमें आपसे जुड़ने का मौका दिया। हमारे प्राचार्य दुनतुलवार सर को भी मेरा विनम्र आभार, जिन्होंने हमें इस संकाय विकास कार्यक्रम को शुरू करवाने के लिए प्रेरित किया। कहते हैं श्रोताओं के बिना व्याख्यान अधूरा रहता है, इसलिए आयोजक संकाय विकास कार्यक्रम श्री मथुरादास मोहता साइंस कॉलेज की तरफ से
अंत में किंतु बहुत बड़ा धन्यवाद मैं सभी श्रोताओं को देती हूँ। धन्यवाद। ओम शांति।
ओम शांति।
ओम शांति।